नमस्कार मित्रगण, अब रेडियो मधुबन के पठामी संस्कृतम कार्यक्रम में हम पढ़ेंगे संस्कृत और मैं लीना मेहंदले आज मैं तुम सबको बताने वाली हूँ तृतीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के कुछ वाक्य। जैसा कि तुम पहले से जानते हो, तृतीय विभक्ति को करण की विभक्ति भी कहते हैं। करण अर्थात जिसके द्वारा कुछ काम संपन्न होता है, तो जहाँ हम हिंदी में कहेंगे के द्वारा, वह तृतीय विभक्ति हो जाती है और संस्कृत में भी उसे तृतीय विभक्ति में ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा राम हाथ से पत्र लिखता है, तो हाथ हो गया वह करण या वह साधन जिससे पत्र लिखा गया है। हाथ से पत्र लिखता है या हाथ की सहायता से या हाथ के द्वारा पत्र लिखता है, तो ये तृतीय विभक्ति संस्कृत में भी वही रहेगी कि रामः हस्तेन पत्रम लिखति, राम हाथ से पत्र लिखता है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आज का पाठ हमारे लिए विशाल शर्मा जी ने लिख के भेजा है, तो विशाल शर्मा जी को हम बहुत बहुत आभार कहेंगे और देखते हैं कि उन्होंने हमें अगले कौन से वाक्य लिख भेजे हैं। सहा वाहनेन आपणम गच्छति, वह वाहन से बाजार जाता है। तो सहा हो गया कर्ता, वाहनेन हो गया करण की विभक्ति, आपणम अर्थात बाजार को, तो आपणम हो गया द्वितीय कर्म की विभक्ति और जाता है गच्छति हो गया क्रिया। तो इस प्रकार हम संस्कृत के व्याकरण को समझ सकते हैं। अब अगला वाक्य देखो, सिंहः दंतेन मृगम खादति, सिंह दांत के द्वारा या दांत की सहायता से हरिण को खाता है। बालकाः पादेन कंदुकम क्रीडन्ति, बच्चे पैर से कंदुक अर्थात गेंद खेलते हैं। यहाँ पर बालकाः बहुवचन है, तो क्रीडन्ति ये भी बहुवचन में आ जाएगा। अब अगर किसी के साथ जाना हो या किसी के साथ मिलकर के कोई काम करना हो, तब भी संस्कृत में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और हिंदी में भी वही होता है। अगर मैं कहूँ कि राम लक्ष्मण के साथ घर जाता है, तो लक्ष्मण के साथ ये हिंदी में भी तृतीय विभक्ति हो गई और संस्कृत में भी हो गई। तो रामः लक्ष्मणेन सह गृहं गच्छति, नृपः सेनापतिना सह गच्छति, राजा सेनापति के साथ जाता है। लता कंदुकेन सह क्रीडति, लता गेंद के साथ खेलती है। बुधेन सह दुष्टः अपि सज्जनः भवति, बुधेन सह अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ, जो सुबुद्ध व्यक्ति है उसके साथ, दुष्टः अपि दुष्ट भी हो तो वह सज्जनः भवति, वह सज्जन हो जाता है। और फिर जहाँ प्रयोजन का अर्थ हो वहाँ भी तृतीय की विभक्ति लगेगी। जैसे असत्येन किम प्रयोजनम, असत्य का क्या प्रयोजन है। दुर्जनेन पुत्रेण किम अर्थ, अगर पुत्र दुर्जन हो तो उसका क्या फायदा है। यहाँ दुर्जनेन पुत्रेण दोनों में तृतीय विभक्ति लगी है। और विशाल जी आगे हमें और समझाते हैं कि और कहाँ कहाँ तृतीय लगती है। जैसे किसी के स्वभाव का अगर वर्णन करना है तब भी तृतीया लगती है। जैसे सह स्वभावेन साधु, वह स्वभाव से साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है। ते दुखेन जीवन्ति, वे दुख से या दुखी मन से, दुखी स्वभाव से रहते हैं। और अगर किसी के अंग में विकार हो तो उस विकार को दर्शाने के लिए भी तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे सहा नेत्रेण काणः, वह आँख से काना है। अर्थात तिरछा देखने वाला है। सह पादेन खंजः, वह पैर से विकलांग है, खंज है अर्थात पंगु है। फिर जहाँ पर हमें कहना हो बस अब और नहीं चाहिए या मत कर, वहाँ पर भी अलम शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है और वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अलम विवादेन, अब विवाद को बस करो। अलम हसीतेन, बहुत हंस लिया अब हंसी को बंद करो। और अब देखते हैं ये मनुस्मृति का एक श्लोक जिसमें तृतीया या करण की विभक्ति लगी है। ये प्यारा सा श्लोक है, कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति, हमारे जो शरीर के गात्र हैं या हमारे जो अवयव हैं शरीर के, वह पानी से शुद्ध होते हैं। तो अद्भिः, ये हो गई तृतीया विभक्ति। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन हमारा जो है वह सच बोलने से शुद्ध होता है या शुद्ध रहता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप इन दोनों के कारण सभी प्राणियों की आत्मा शुद्ध रहती है। तो विद्या तपोभ्याम, यहाँ विद्या और तप दोनों की बात हो रही है, तो उसका जो स्वरूप हो जाएगा वह विद्या तपोभ्याम, अर्थात ये द्विवचन हो गया लेकिन विभक्ति वही रही, करण की तृतीया। और भूतात्मा, प्राणियों की आत्मा विद्या और तप से शुद्ध होती है। और बुद्धि ही ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि जो है मनुष्य की वह ज्ञान के कारण शुद्ध होती है। यह ज्ञानेन तृतीया विभक्ति आ गई। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि तृतीया का स्वरूप आ गया है, वहाँ वहाँ हम समझते हैं कि यह करण की विभक्ति है, अर्थात इसके द्वारा कोई क्रिया होने वाली है। जब हम कहते हैं बुद्धि ही ज्ञानेन शुद्ध्यति, तो ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो रही है। तो ज्ञान हो गया करण और बुद्धि शुद्ध हो गई। तो मित्रों, हम विशाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, उन्होंने बड़े मेहनत से हमें ये पाठ बना करके भेजा है, और उनसे हम आग्रह करेंगे कि दोबारा और भी पाठ हमें भेजते रहें और उसे हम यहाँ रेडियो मधुबन पर सुनते रहेंगे। और मित्रों, अब विशाल शर्मा का आभार मानने के साथ साथ हम एक बहुत सुंदर श्लोक देखते हैं जो हमारे एक उपनिषद का पहला श्लोक है। इस उपनिषद का नाम है केनोपनिषद। तुम्हें पता है कि कहा शब्द का अर्थ है कौन, तो केन अर्थात किसके द्वारा। चूंकि इस उपनिषद का आरंभ केन शब्द से होता है, इसलिए इस उपनिषद का नाम पड़ा है केनोपनिषद। और इसका पहला श्लोक इस प्रकार है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। यहाँ एक शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है कि हे गुरु, मुझे बताइए कि केन इशितं पतति प्रेषितं मनः, किसके कारण, किसकी प्रेरणा से हमारा मन इधर उधर भागता है, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, किसकी प्रेरणा से हमारा प्राण हमारे शरीर को आगे चलाता है, और केने शिताम वाचमिमाम वदन्ति, किसकी प्रेरणा से हमारी वाचा बोलने के लिए समर्थ होती है, और किसके कारण हमारी आँखें और हमारे कान देख पाते हैं या सुन पाते हैं। तो हे गुरुदेव, मुझे उनके विषय में बताइए जो हमारे इन सारे इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं, उनके कर्ता हैं, वह कौन है। तो केन शब्द से ये आरंभ हुआ तो ये हो गया केनोपनिषद। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस उपनिषद में आगे दिया गया है। जब कभी हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो हम केनोपनिषद को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम हमें यहाँ समाप्त करना है। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो।